नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 25 जून 2021 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की दस्तक। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने जताई चिंता। वैश्विक टीकाकरण को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ से अपने प्रभाव और पहुंच का इस्तेमाल करने की अपील। पहचान दस्तावेजों और राष्ट्रीयता के बगैर जीवन गुजार रहे अनेक राष्ट्रविहीनों को वैक्सीन न मिल पाने का जोखिम। कोरोना वायरस संकट काल में मादक पदार्थों के सेवन में तेज उछाल। और तन मन का योग, स्वस्थ जीवन शैली की बुनियाद। होगी एक खास बातचीत डॉक्टर कृष्णरामन के साथ। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक देशों में कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जताई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा,
I know that globally there is currently a lot of concern about the Delta variant, and WHO is concerned about it too. Delta is the most transmissible of the variants identified so far.
महानिदेशक गेब्रियसिस कह रहे थे कि कोविड-19 के अब तक सभी रूपों में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। अब तक 85 देशों में इसके मामलों की शिनाख्त की जा चुकी है और ये उन आबादियों में ज्यादा तेजी से फैल रहा है जहां अभी टीकाकरण नहीं हुआ है। संगठन के महानिदेशक ने कहा कि वायरस के नए प्रकारों का उभरना अपेक्षित है और ये आने वाले दिनों में भी होता रहेगा, मगर कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम कर इन प्रकारों के उभरने और फैलने पर रोक लगाई जा सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 17,95,00,000 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, 38,00,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और विश्व भर में कोविड-19 वैक्सीन की अब तक 2,62,00,00,000 से ज्यादा खुराकों को दिया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए कोविड-19 टीकाकरण के प्रयासों में तेजी लाने का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर जगह हर व्यक्ति के लिए कोविड-19 वैक्सीन मुहैया कराने के लिए यूरोपीय संघ को अपने प्रभाव और पहुंच का इस्तेमाल करना होगा।
The pandemic is causing more deaths today than a year ago, and vaccines are our only way out of this crisis. They must be considered as a global public good, available and affordable to all.
यूएन प्रमुख कह रहे थे कि वैश्विक महामारी एक वर्ष पहले की तुलना में अब अधिक मौतों की वजह बन रही है और वैक्सीनें इस संकट से बाहर निकलने का हमारा एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि इसे वैश्विक सार्वजनिक भलाई के रूप में देखा जाना होगा और सभी के लिए उपलब्ध बनाना होगा। इस सिलसिले में उन्होंने एक टास्क फोर्स को स्थापित किए जाने की अपील की है जो वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के सभी विकल्पों पर विचार करेगी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने आगाह किया है कि अनेक राष्ट्रविहीन लोगों के कोविड-19 टीकाकरण से वंचित रह जाने का जोखिम है। राष्ट्रीयता या पहचान पत्रों के अभाव में जीवन गुजार रहे देशविहीनों के लिए कोविड-19 के दौरान एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
एक अनुमान के अनुसार 94 देशों में 42,00,000 राष्ट्रविहीन लोग रहते हैं, यानी उनके पास किसी देश की राष्ट्रीयता नहीं है, मगर उनकी वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में राष्ट्रविहीन लोगों को स्वास्थ्य देखभाल व सामाजिक सेवाएं पाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अधिकांश राष्ट्रविहीन लोगों को कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है और वे अदृश्य हैं। यही कारण है कि वे उपचार या परीक्षण के लिए सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें देश निकाला दे दिया जा सकता है। यूएन एजेंसी ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें राष्ट्रविहीन आबादी पर कोविड-19 के असर की पड़ताल की गई है। रिपोर्ट दर्शाती है कि जिन लोगों के पास राष्ट्रीयता या पहचान दस्तावेज नहीं है, उन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक नहीं मिल पाएगी। ऐसा ना होने देने के लिए देशों से विशेष प्रयास करने का आग्रह किया गया है और व्यक्तियों की शिनाख्त के लिए अन्य दस्तावेजों या विकल्पों का सहारा लेने जाने की बात कही गई है।
मादक पदार्थों एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व भर में पिछले साल 27.5 करोड़ लोगों ने मादक पदार्थों का सेवन किया। कोविड-19 महामारी ने 10 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया है, बेरोजगारी और विषमता बढ़ी है और वर्ष 2020 में दुनिया में 25 करोड़ से अधिक रोजगार खत्म हो गए। कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर हुआ है और इन सभी वजहों से ड्रग्स के इस्तेमाल में तेजी आई है। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट दर्शाती है कि पिछले साल 19,000 से ज्यादा लड़के लड़कियों को सीधे तौर पर उनके अधिकार हनन के गंभीर मामलों की पीड़ा झेलनी पड़ी। इनमें बाल सैनिकों के रूप में उनकी भर्ती और इस्तेमाल किया जाना, जान से मारना, अपंग बनाना, बलात्कार और यौन हिंसा का शिकार बनाना है। एक रिपोर्ट के साथ प्रतिष्ठा जैन।
रिपोर्ट बताती है कि 8,000 से अधिक बच्चों की सशस्त्र संघर्षों में या तो मौत हो गई या फिर वे अपंग हो गए। अफगानिस्तान, सीरिया, यमन और सोमालिया में सबसे अधिक संख्या में बच्चे पीड़ित हैं। पिछले साल 7,000 बच्चों को बाल सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया। उन्हें अगवा किया जाने, बलात्कार और यौन हिंसा के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। UN महासचिव की विशेष प्रतिनिधि वर्जीनिया गाम्बा।
Children will no longer be the last priority of the international agenda, nor the least protected group of individuals in the planet.
वर्जीनिया गाम्बा कह रही थी कि बच्चे ना तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा की अंतिम प्राथमिकता हो सकते हैं और ना ही पृथ्वी पर सबसे कम सुरक्षा प्राप्त समूह। हमें बच्चों को हिंसा व दुर्व्यवहार से इतर एक विकल्प देना होगा।
इस सप्ताह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने योगा फॉर वेलबींग नामक विषय पर एक ऑनलाइन चर्चा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्णा रामन ने भी शिरकत की, जो एक चिकित्सक के तौर पर पिछले 3 दशकों से पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के साथ साथ जीवन शैली में योग के महत्व को भी बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रयासरत हैं। UN न्यूज हिंदी के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने बताया कि COVID-19 के दौरान योग अभ्यास और अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है।
योग मार्ग में 2 भाग है, एक है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, दूसरा है मन को स्वस्थ रखने के लिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आसन प्राणायाम दिया गया है और जब हम उसको रोज प्रैक्टिस करते हैं, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो आता है, जैसा अभी है कोविड प्रॉब्लम्स आता है, वो अंतर शक्ति जो है लंग्स में उसको ताकत को बढ़ जाता है और बढ़ता है, जो योगा प्रैक्टिस है वो बढ़ जाता है। और रिकवरी में प्राणायाम हम जब करते हैं, रिकवरी बहुत आसान से होता है। लेकिन ये स्टेप हम पहले जाएंगे, यदि हम रोज योग प्राणायाम आसन प्राणायाम करते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आता है, स्पेशली अभी कोविड टाइम में है, अंतर जो शक्ति है वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया है। सो जो रेसिस्टेंस तैयार हो गया है उसका एडवांटेज डेफिनेटली अद्भुत है। और प्राणायाम में एक स्पेशल मेथड है जिससे अंदर वो नोस में जो लाइनिंग है उसको स्टिमुलेट करता है प्राणायाम, और जो टॉक्सिन्स अंदर जाता है उसको बाहर करता है। वो प्राणायाम का अद्भुत शक्ति है जिसका शक्ति किसी भी साइंस में नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा।
अभी हमने योग के निजी फायदों के, व्यक्तियों के निजी जीवन में फायदों की बात की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का ये भी एक लक्ष्य रहा है कि वर्ष 2030 तक टिकाऊ विकास, सभी के लिए एक अच्छा, बेहतर, स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। तो ऐसे में योग उस बड़े लक्ष्य को, उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने में योग की क्या भूमिका हो सकती है?
यदि हमको हेल्थ पॉलिसीज वर्ल्ड को ऐसा प्रिवेंटिव हेल्थ के डायरेक्शन में जाना है, उसको सक्सेस करना है, हर एक आदमी को अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि मैं ठीक तरफ डाइट खाऊंगा, ठीक तरफ टाइम में सोऊंगा, टाइम में आई विल वेक अप, ये सब डे टू डे लाइफस्टाइल को मैं ठीक तरफ ऑर्गेनाइज करूंगा, या तो हेल्थ नहीं आएगा। आजकल तो ये बहुत कम हो रहा है, पीपल तो 12 o'clock 1 o'clock तक वर्क करते हैं और मॉर्निंग 8 बजे उठते हैं तो कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, भाई मुझे कुछ नहीं लगता है। अभी नहीं प्रॉब्लम लगेगा, 10 वर्ष के बाद हाइपरटेंशन आएगा, डायबिटीज आएगा, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आएगा। तो पहले से हमको देखभाल करना चाहिए। प्रिवेंटिव गाइडलाइंस हमारे योग सूत्रास में ही मिलता है पहले से। What as a doctor मैं कहता हूँ, parents का role से ये शुरू होने वाला है। हर एक परिवार में inner transformation बदलना हो, inner change होना चाहिए, उससे क्या होगा जब फादर और मदर योग प्रैक्टिस करता है, प्रॉपर डाइट करता है, प्रॉपर हैबिट्स करता है, चिल्ड्रन भी उसको मना करेगा या तो चिल्ड्रन फॉलो नहीं करेगा। कई लोग मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, डॉक्टर बताइए डॉक्टर वो कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, बताओ। ऐसे माइंड नहीं बता सकता, अंदर से आना चाहिए, मैं बताऊंगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से आना चाहिए। यदि पेरेंट्स पहली ब्रिक है, देन चिल्ड्रन करेंगे, जिन चिल्ड्रन नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम सेव कर सकते हैं, तो सारा लोग, सारा दुनिया को हम सेव कर सकते हैं। सो ऐसा हमको फोकस होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस ऐसा फोकस करना चाहिए, एवरी फैमिली तो योग करना चाहिए, हेल्थी लाइफस्टाइल अपना कर उसको पैशन से स्प्रेड करना चाहिए। यदि मैं, मुझे हेल्थी लाइफस्टाइल में पैशन नहीं है, मैं कैसा स्प्रेड करूंगा उसको? तो वो मैं कहता हूँ वो इन्फेक्टिविटी होना चाहिए, मतलब आपको अंदर में वो हेल्थी प्रैक्टिसेस लाइफ में जो करना है, जो आपको कन्विंस हो गए है, उसको दूसरे आदमी को देना चाहिए।
डॉक्टर कृष्ण रामन के साथ UN न्यूज हिंदी की बातचीत। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए, नमस्कार।